पृष्ठ संख्या 112, विषय अर्थसत्ता, स्त्री शर्म और स्त्री देह। संदर्भ आवा। समकालीन स्त्री लेखन और स्त्री विमर्श लेखन में भी स्त्री के कामकाजी चरित्र और उसकी चुनौतियों पर गंभीरतापूर्ण एवं यथार्थवादी नज़रिए से विचार हुआ है। विभिन्न भूमिकाओं को अपनाती एवं निभाती हुई स्त्री चरित्रों की अब कोई कमी नहीं है। साहित्य से लेकर विज्ञान तक एवं खेल से लेकर युद्ध तक सभी क्षेत्रों में स्त्री चरित्रों की भूमिकाओं को बड़ी संजीदगी एवं दृढ़ता से गढ़ा गया है। आर्थिक शक्ति एवं जरूरत बनती स्त्री चरित्रों की भरमार यह दिखाती है कि दुनिया कैसे स्त्री शक्ति के महत्व को स्वीकारने के लिए बाध्य है। स्त्री अपनी योग्यता एवं श्रम का दोहन अपने तरीके से करना चाहती है, वह कर भी रही है। वह अपनी संतुलित मानवीय दृष्टि को हथियार बनाकर एक वर्चस्वहीन और समरस दुनिया की रचना करना चाहती है। आज सिर्फ वह आधी दुनिया की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की जिम्मेदारी अपने कंधों पर महसूस कर रही है। आवां इस लिहाज से एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं। इन्वर्टेड कॉमा शुरू। आत्मनिर्भर होने की परिभाषा है स्वयं के बुद्धि विवेक का उपयोग, ना कि पुरुषों के समकक्ष आर्थिक समक्षता। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ आवा, चित्रा मुद्गल, पृष्ठ संख्या 129। इन्वर्टेड कॉमा शुरू। फिर मैं आत्मनिर्भर हूँ दीदी, अपनी बच्ची की परवरिश कर सकने में समर्थ। मेरा मातृत्व ब्याह के तुच्छे प्रमाण पत्र का मोहताज नहीं। असुविधा है तो मात्र इतनी भर कि माँ स्वयं काम पर जाएगी या मेरी बच्ची की देखभाल करेगी। स्त्री की क्षमता को देह से ऊपर उठकर स्वीकार करने वाला रूढ़ समाज को बोध कराना आखिर किन कंधों का दायित्व होगा। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ वही, पृष्ठ संख्या 111 और 123। उपयुक्त पंक्तियों को पढ़कर सहज ही समझा जा सकता है कि स्त्री के व्यक्तित्व और आत्मनिर्भरता में संबंध कितना गहरा है। एक आत्मनिर्भर व्यक्ति ही अपने आत्म को न सिर्फ समझ सकता है, बल्कि उसे अभिव्यक्त भी कर सकता है, आत्मनिर्णय ले सकता है। हिंदी की समकालीन लेखिका चित्रा मुद्गल ने अपने लेखन के द्वारा और अपने पात्रों के द्वारा हिंदी क्षेत्र में आधुनिक चेतना के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पृष्ठ संख्या 113। लेखिका के पात्र हर तरह की सीमा को तोड़ते हुए एक नई और ताजी अवधारणा के निर्माण में सक्रिय दिखते हैं। एक तरफ लेखिका स्त्री विमर्श के तयशुदा दायरों से बाहर और विस्तृत क्षेत्र को घेरती है, तो दूसरी तरफ स्त्री विमर्श की भीतरी विरोधाभासों को भी बड़ी सहजता से सुलझाने की कोशिश करती है। एक जमीन अपनी और आवां इस लिहाज से महत्वपूर्ण उपन्यास है। अगला पैराग्राफ। आवां विषय, विचार और दृष्टि तीनों कोणों में बड़ा उपन्यास का दर्जा पा चुका है। लेखिका ने अपनी इस कृति के माध्यम से न सिर्फ स्त्री दृष्टि और उसके व्यापक सरोकार को अभिव्यक्त किया है, बल्कि स्त्री की तयशुदा परिभाषा को भी पुराना बना दिया है। हालांकि ये स्त्री लेखन की हदबंदी पहले भी टूटती रही है, लेकिन आवा में लेखिका ने हर कोण से स्त्री लेखन संबंधी पूर्वाग्रहों को तोड़ा है। हिंदी के लिए ट्रेड यूनियन की भीतरी कथा की इतनी बारीक जानकारी नई और वह भी स्त्री दृष्टि से पूर्ण ही मानी गई है। यहाँ एक साथ स्त्री का आत्मसंघर्ष और उसका बाह्य संघर्ष दोनों अभिव्यक्त हुआ है। यानी यहाँ स्त्री अपने अस्तित्व और अस्मिता दोनों के लिए एक साथ संघर्षरत दिखाई गई है। आलोचक पुष्पपाल सिंह ने आवा के तथ्य एवं इसके प्रतिपादन पर टिप्पणी करते हुए लिखा है, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, स्त्री स्वातंत्र्य, स्त्री पुरुष का साथ, विवाह संस्था से मोहभंग, इस मोहभंग के कारण स्त्री स्त्री का साथ रहना सोना और सहवास, समलैंगिकता, पुरुष साथी को बिल्कुल नकार कर कुंवारी माँ की अवधारणा, समाज में प्रत्येक स्तर और संबंध का केवल काम संबंध में परिणत हो जाना, जिसमें हर रूप में केवल स्त्री का यौन शोषण पिता और भाई जैसे पवित्र रिश्तों द्वारा भी नारी पर बलात्कार, स्त्री संघर्ष और स्वातंत्र से जुड़े अनेक प्रश्नों की गुत्थी सुलझाने के लिए अंजना बासवानी, गौतमी, हर्षा, स्मिता, शाहबेन किशोरी बाई आदि पात्र अभिकल्पित किए गए हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ, हिंदी गद्य इधर की उपलब्धियां, पुष्पपाल सिंह, पृष्ठ संख्या 44। उपयुक्त तो टिप्पणी से स्पष्ट है कि आमा का सरोकार न सिर्फ व्यापक है बल्कि गहरा भी है। स्त्री विमर्श पर केंद्रित होते हुए यह उपन्यास मजदूर जीवन से जुड़े उन तमाम प्रश्नों को बहस के केंद्र में लाता है जो हिंदी की दुनिया के लिए अब तक अपरिचित सा था। इसमें मजदूर और ट्रेड यूनियन बाजी की कहानी उतनी ही मार्मिक और यथार्थवादी नजरिए से प्रस्तुत की गई है जितनी कि एक कामकाजी स्त्री की कहानी। लेखिका चूंकि स्वयं मजदूर संगठनों से जुड़ी रही हैं, अतः उनका लिखा यहाँ बहुत कुछ आत्म अनुभव के दायरे में ही माना जा सकता है। उन्हीं के शब्दों में, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, ट्रेड यूनियन से बतौर सक्रिय कार्यकर्ता मेरा लंबा नाता रहा है। श्रमिक बस्तियाँ मेरी चेतना शिविर। यह सच है कि ट्रेड यूनियन के जिन अंतर विरोधों और अवमूल्यनों से मेरा सामना हुआ उसने मुझे अवाक ही नहीं किया, विश्वास भी खंडित हुआ मेरा। उस समय भी आक्रोश अभिव्यंजना के लिए छटपटा रहा था। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ, साहित्य अमृत पत्रिका, अप्रैल 2005, लेख चित्रा मुद्गल, पृष्ठ संख्या 35। पृष्ठ संख्या 114। एक आम मजदूर के हित की राजनीति करने वाले मजदूर संगठन भी किस तरह भ्रष्ट और पाखंडी चोला पहने हुए हैं, इसे लेखिका ने बहुत ही वस्तुनिष्ठ तरीके से हमारे सामने रखा है। उपन्यास की इसी खूबी को आलोचक शिव कुमार मिश्र यूं बताते हैं, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, बावजूद इसके कि उपन्यास में औरत अपने वजूद से जुड़े सारे अहम सवालों के साथ केंद्र में है, उपन्यास में श्रमिक आंदोलन से जुड़ा जो कुछ भी रचा सिरजा जाकर सामने आया है उसके महत्व को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक स्त्री होते हुए चित्रा मुद्गल ने औद्योगिक मजदूर वर्ग के जीवन की समस्याओं और सवालों को विशद रूप में देखा और चित्रित किया। यह तथ्य उनके रचनात्मक तथा मानवीय सरोकारों के बड़े दायरे का साक्ष्य तो देता ही है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ, पहल पत्रिका 67, जनवरी 2001, लेख शिव कुमार मिश्र, पृष्ठ संख्या 286। अगला पैराग्राफ, भारतीय श्रमिक आंदोलन का चरित्र और इसकी उपलब्धियों का महत्व अपनी जगह है, लेकिन लेखिका ने अपना और हमारा ध्यान इसमें आई मूल्यगत गिरावटों पर डालना चाहा है। आज़ादी हमारी अभी कितनी अधूरी और सीमित है, इसे एक स्त्री और दलित लेखक के आत्मगत अनुभवों पर आधारित पाठों से ही सही सही जाना जा सकता है। लेखिका भारतीय मजदूर संस्थाओं के बहाने समूचे तंत्र में आई गिरावट से व्यथित होकर सवाल उठाती है। आलोचक शिव कुमार मिश्र के ही शब्दों में, डैश इन्वर्टेड कॉमा शुरू, देश में श्रमिक आंदोलनों को बम्बई के श्रमिक आंदोलन ने दिशाएं दी हैं। इस पृष्ठभूमि में उपन्यास में चित्रित 60 के दशक का श्रमिक आंदोलन एक त्रासद विडंबना ही माना जाएगा। उसकी शानदार ऐतिहासिक उपलब्धियों का एक दयनीय विपर्यय जिस आंदोलन को चित्रा मुदगल ने बंबई में देखा और जिया, उसके इतिहास के संदर्भ में उनका क्षुब्ध होकर यह पूछना कि आज़ादी के बाद उसमें एक भटकाव और विघटन कैसे और क्यों कर आया, कैसे उसकी उपलब्धियां झुटलाई गईं, बहुत जायज और स्वाभाविक है। वस्तुतः यह सात्विक विक्षोभ ही है जिसके चलते पूरी वस्तुनिष्ठता तथा तटस्थता से उन्होंने उसे उधेड़ा और उसके अंतर्विरोधों तथा विसंगतियों पर चोट की है। इन्वर्टेड कॉमा शुरू, संदर्भ ग्रंथ वही, पृष्ठ संख्या 287। अगला पैराग्राफ। इस प्रकार यह उपन्यास स्त्री विमर्श ब्रैकेट में स्त्री श्रम और स्त्री देह और मजदूर यूनियन की गतिविधियों पर केंद्रित है। दोनों विषय समान रूप से उपन्यास में जगह पाए हैं, हालांकि कुछ आलोचकों की राय इससे भिन्न भी है। उनके अनुसार केंद्रीय विषय तो स्त्री प्रश्न ही है। मजदूर यूनियनों की भीतरी राजनीति और उनमें आई मूल्यगत गिरावट की चर्चा बस एक मजबूत पृष्ठभूमि ही बनाती है कथा की। आलोचक शिवकुमार मिश्र इसे लेखिका के लिए स्वाभाविक ही मानते हैं, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा शुरू, लेखिका चूंकि खुद एक स्त्री है, अतएव उसके मूलवर्ती संवेदनात्मक उद्देश्य का स्त्री के हक में या उसकी तरह ढल जाना स्वाभाविक है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ वही, पृष्ठ संख्या 286, पृष्ठ संख्या 12। पृष्ठ संख्या 115। यह सच है कि कोई भी रचनाकार 100% तय रास्तों अथवा मंजिलों के अनुसार ही अपनी कृति की रचना नहीं करता, लेकिन फिर भी रचना की मूल संवेदना और उसकी प्रस्तुति लेखक के निजी आग्रहों से ही नियंत्रित होती है। लेखिका ने स्वयं स्वीकारा भी है कि वे एक कृति ट्रेड यूनियन पर लिखना चाहती थी, सो उन्होंने आवा लिखा। आगे आलोचक ने स्वयं माना है कि इन्वर्टेड कॉमा शुरू, परंतु जिस बात ने उसे भीतर तक मथते हुए डॉक्टर दत्ता सामंत और उनकी कामगार आघाड़ी से अपना नाता तोड़ने को विवश कर दिया, उसका असली संबंध स्त्री के स्त्रीत्व पर की गई चोट, उसके सम्मान पर किया जाने वाला आघात था। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ वही, पृष्ठ संख्या 286। यानी श्रमिक संगठनों के भीतर स्त्री की स्थिति की गहन पड़ताल की कृति को स्त्री विमर्श की ओर मोड़ देता है। दूसरे शब्दों में यह एक मजदूर स्त्री और मजदूर संगठन के बीच की राजनीति की कथा है, जो व्यापक भी है, त्रासद भी है। अगला पैराग्राफ। चूंकि परिवेश से ही मानसिकता बनती है और परिवेश धीरे धीरे बनता और बदलता है, कहने की आवश्यकता नहीं कि हम पितृसत्तात्मक परिवेश और पुरुष वर्चस्ववादी संस्कृति की उपज हैं। अतः हमारी पूरी सोच, क्रिया और दर्शन सब पर स्त्री व्यक्तित्व विरोधी मानसिकता हावी रहती है। हम बहुत सहज और स्वाभाविक तरीके से स्त्री अधिकारों का हनन करते रहते हैं। यह कुछ परंपरा के नाम पर स्वीकार्य हो गया है, तो कुछ सभ्यता और संस्कृति के नाम पर। लेकिन जैसे जैसे आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियां बदलती गईं, परिवेश और उससे निर्मित मानसिकता में भी बदलाव आने लगा। लेकिन क्या यह बदलाव स्त्री के संदर्भ में ही, विशेषकर उसे देखने और उसकी कार्य क्षमता पर विश्वास करने की मानसिकता के लिहाज से आया है? अगर इसका उत्तर हाँ है, तो इसकी मूल वजहें क्या-क्या रहीं? क्या उसकी सबसे बड़ी वजह स्त्री का आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होना और वैचारिक दृष्टि से निरंतर बौद्धिक होते जाना नहीं है? अगला पैराग्राफ। यह सच है कि अर्थ और अर्थ की शक्ति किसी भी व्यक्ति को न सिर्फ व्यक्ति बनाती है, बल्कि उसे व्यक्तित्व प्रदान करने में भी अहम रोल निभाती है। अर्थ की ताकत सदियों से वह सब कुछ तय करती आई है जिससे सत्ता, स्वाभिमान और वर्चस्व हासिल किया जा सके। जिसके पास यह शक्ति नहीं रही, वह गुलाम बना, उपनिवेश बना, और तो और स्त्री अथवा स्त्रीलिंग बना। कहने की आवश्यकता नहीं कि लिंग भेद से लेकर नस्ल भेद तक की बुनियाद में यह अर्थ की सत्ता ही है। दूसरे शब्दों में, अर्थ की राजनीति को समझना दरअसल सभ्यता, संस्कृति और तथाकथित परंपरा और मूल्य को भी समझना है, पुरुषत्व और स्त्रीत्व को भी समझना है। पृष्ठ संख्या 116। आधुनिक युग में स्त्री को जैसे ही आत्मबोध होना शुरू हुआ, पितृसत्ता के सामने वह चुनौती बनकर खड़ी हो गई। यह प्रक्रिया आज भी जारी है। नतीजतन, अब स्त्री अधिकाधिक व्यक्ति बन रही है, साथ ही इसकी कीमत भी चुका रही है। यानी शोषण के पुराने हथियारों की जगह नए औजार और तरीके भी इजाद कर लिए गए हैं। अगला पैराग्राफ। घर से बाहर काम करने निकली स्त्री उतनी ही असुरक्षित एवं सशंकित रहती है जितनी कि चौखट के अंदर की स्त्री। आज के उत्तर आधुनिक पूंजीवादी बाजार व्यवस्था में स्त्री केवल परंपरागत यौन शोषण की ही शिकार नहीं हो रही, बल्कि एक साथ उसके यौन मनोबल और आकांक्षाओं का भी बलात्कार हो रहा है। सामंती समाज में वह काम और गर्भ तक देखी जाती थी। आज वह इसके अलावा सुंदर उत्पाद, उत्पाद के बेचने के साधन तथा पूंजी में तब्दील कर दी गई है। वस्तु तो वह पहले भी थी, लेकिन नए भूमंडलीय पूंजीवादी बाजार ने उसे नए व्यक्तित्व के साथ साथ नए वस्तुवादी उपमान भी दे दिए हैं। कामुकता आज के बाजार का सबसे कारगर हथियार है और उसकी माध्यम बनाई जा रही है स्त्री और उसकी यौनिकता। हालांकि आधुनिक चेतना और स्त्री की आत्मनिर्भर स्थिति ने परिदृश्य को बहुत कुछ बदल भी दिया है, जैसे कि आज स्त्री केवल भोग्या ही नहीं, ना ही केवल बिकने वाली वस्तु, बल्कि वह स्वयं भी भोक्ता और खरीददार बनी है। तो क्या इससे यह साबित होता है कि अब स्त्री पुरुष विचार और व्यवहार दोनों स्तरों पर बराबर का दर्जा पाने लगा है? अब कोई दोहरा मापदंड नहीं अपनाया जाता। जाहिर है ऐसा नहीं है। जो छूट और जगह स्त्री को मिली है, वह पुरुष की निर्बाध सत्ता के आगे कुछ भी नहीं है। अगला पैराग्राफ। आज स्त्रियों ने कुछ आत्म और अर्थबल जरूर अर्जित कर लिया है, लेकिन पितृसत्तात्मक ग्रंथियों एवं बेड़ियों को पूरी तरह मिटाना अब भी एक चुनौती है। स्त्री की इतनी भर आज़ादी और सहजता ने पितृसत्ता को इतना डरा दिया है कि जरा सोचिए, जब वह आधी आबादी के रूप में पूरी तरह चेतनाशील हो जाएगी, तब क्या होगा? रोज के अखबार और मीडिया के माध्यम से आने वाले समाचारों में जिस तरह स्त्री जगह जगह हमलों और अपमानों का शिकार हो रही है, उससे साफ लगता है कि वर्तमान पितृसत्ता अपनी शक्ति और सीमाएं जान चुका है। समकालीन बौद्धिक जगत आज बहुत हद तक स्त्री के प्रति न्याय और सम्मान का भाव रखता है। विशेषकर नारीवादी चिंतन ने लोकतांत्रिक शक्तियों के साथ मिलकर स्त्री के पक्ष में एक माहौल पैदा किया है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान परिवेश और उसकी मानसिकता में हम धीरे धीरे बदलाव देख रहे हैं। समकालीन स्त्री लेखकों ने इस अभियान में अपना विशेष योगदान दिया है, जो कि सहज स्पष्ट है। पृष्ठ संख्या 117। जैसा कि हम पिछले अध्ययन में देख चुके हैं, स्त्री की भूमिका पहले की अपेक्षा काफी बड़ी हुई है। वह नए नए क्षेत्रों में प्रवेश कर चुकी है। धीरे धीरे स्त्री क्षेत्र और पुरुष क्षेत्र का फर्क मिट सा गया है। बाजार, विचार और वर्चस्व तीनों की राजनीति और कार्य पद्धति को वह भली भांति जान गई है। उसे अब पहले की तरह भरमाया नहीं जा सकता। वह चीजों को समझने लगी है, प्रश्न करने लगी है। यह प्रश्न करने की शुरुआत भले बहुत पहले हो चुकी है, लेकिन आज जिस स्वाभिमान, संघर्ष और चुनौती का तालमेल हमें दिखाई देता है, इन प्रश्नों, तेवरों और निश्चयों में वह पहले की तुलना में काफी अलग है, आक्रामक है, विजयाकांक्षी है। स्त्री अपनी सीमित भूमिका और निर्धारित रास्तों का ना सिर्फ अतिक्रमण कर रही है, बल्कि नए रास्तों और नए विकल्पों वाली दुनिया रचने का सपना और हौसला भी दिखा रही है। अगला पैराग्राफ। आत्मनिर्भरता ने स्त्री को स्वतंत्रता की नई नई राहें दिखाई हैं। वह हर स्तर पर सहज और स्वतंत्र हो रही है। उसे चुनौतियों और हमलों से प्रेम हो गया है। अब वह जान गई है कि आज़ादी जोखिम का ही दूसरा नाम है। बिना जोखिम उठाए वह अपनी खोल के बाहर की दुनिया नहीं देख सकती। विवाह को स्त्री का रोजगार और पति को उसका खुदा मानने वाली संस्कृति अपनी तमाम धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक और नैतिक मूल्यों एवं कानूनों के इस्तेमाल के बावजूद बैकफुट पर आ गई है। पुनर्विचार और पुनर्मूल्यांकन, अपनी कथनी और करनी को एक करना उसकी अनिवार्य मजबूरी बन चुकी है। यह आत्मनिर्भरता स्त्री के आत्मनिर्णय की मूल कुंजी बन चुकी है। वह अपनी उपनिवेशित कर दी गई देह, दिल और दिमाग को पूरी तरह से मुक्त करने के लिए संघर्षरत है। इसमें उसे व्यापक सफलता भी मिल रही है। अब वह अपनी देह, दिल और दिमाग को पूरी तरह से आत्मनियंत्रित एवं आत्मनिर्णय से संचालित करना चाहती है। आइए अब देह के स्तर पर मुक्ति की चाह और इसके शोषण के नए औजारों और रूपों पर विचार करें। अगला पैराग्राफ। स्त्री महज देह नहीं है, पर देह से ऊपर देखी भी नहीं जाती है। यह स्त्री जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। बच्ची से लेकर बूढ़ी औरत तक का बलात्कार होना इसी विडंबना की पुष्टि करता है। दोष और दोषी की खोज में चाहे जो कुछ भी निकल कर आए, लेकिन इतना तय है कि यह विडंबना सदियों की कहानी है और इसके सूत्रधार, पटकथा लेखक, निर्देशक और पाठक या दर्शक सबके सब पुरुष हैं। मूल दृष्टि पुरुष दृष्टि ही है। स्त्री यहाँ महज माध्यम है, देह है, आत्मविहीन देह। समकालीन हिंदी उपन्यासों में स्त्री के इस देह गणित को बहुत ही बारीक नजरों से देखा और इसके निहितार्थों को सामने रखा गया है। पृष्ठ संख्या 118। आलोचक शिव कुमार मिश्र आवा पर अपनी टिप्पणी करते हुए लिखते भी हैं, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, चित्रा जी ने स्त्री को देह से ऊपर उठकर पहचानने की बात की है और उस उपन्यास में उसे एक संकल्प और प्रतिज्ञा के रूप में फिर से उस पुरुष समाज के सामने रखने का दायित्व ओढ़ा है, जिसके लिए औरत परंपरा से मोहक और लुभावने विशेषणों से पुकारे जाने के बावजूद मूलतः देह ही रही है, जिसकी शुचिता उसे हर कीमत पर उस व्यक्ति के लिए बनाए और बचाए रखनी है जो धर्म और धर्मशास्त्र विहित नियमों के तहत उसे पति के रूप में प्राप्त हुआ है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ वही, पृष्ठ संख्या 288। इस उपन्यास के सारे नारी पात्र अपनी देह निहति के खिलाफ संघर्षरत हैं। आइए कुछ उदाहरण उपन्यास से ही लेते हैं। पहला, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, पिता समान हूँ मैं तुम्हारे, पिता नहीं हूँ। नियंत्रण में नहीं रहूँगा तो कह नहीं सकता क्या होऊंगा। तुम्हारी देह के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करूँगा, अपनी देह के साथ खेलने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। हाथ मत छुड़ाओ, जैसा कहूँ करती चलो। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ आवा, पृष्ठ संख्या 136। ब्रैकेट में, अन्ना साहेब अपनी बेटी समान नमिता द्वारा हस्तमैथुन कराते हुए अपना यौन दर्शन उगल रहे हैं। ब्रैकेट क्लोज। दूसरा, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, भीड़ से उसकी मुलाकात जब भी होती, उसके धड़ से सिर गायब मिलता और उसके संभलते ना संभलते वह धड़ अचानक कोंचती कुहनियों, सरसराती अंगुलियों, लोलुप कनखियों, सिसकारी भरती छुअन में तब्दील हो अपने करीब दबोचते चापते संभोग को उद्दीप्त होने लगता। मुक्ति की छटपटाहट उसकी थर्राती रंध्रों से रिश्ती परनालों सी उफनने लगती और वह पाती कि उसके देह पर चढ़े कपड़े अचानक देह की चमड़ी हो गए हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ वही, पृष्ठ संख्या 13। ब्रैकेट में, लेखिका ने नमिता और उस जैसी कामकाजी स्त्रियों का आत्म अनुभव परक चित्र खींचा है जिसमें स्त्रियों को मर्दों की भीड़ का शिकार होना पड़ता है। ब्रैकेट क्लोज। तीसरा, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, झूठी, प्राण ले लूंगा मैं तुम्हारे, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। जानती हो बाप बनने के लिए मैंने तुम्हारे ऊपर कितना खर्च किया। मैं रंडियों से बाप नहीं बनना चाहता था, मुझे नहीं गवारा था ऐसे किराए की कोख। मुझे सिर्फ उस लड़की से औलाद चाहिए जो पेशेवर ना हो, पवित्र हो, जो मुझसे प्रेम कर सके, सिर्फ मेरे लिए माँ बने। मुझे बाप बनाकर तुम जीवन भर ऐशो आराम से रह सकती थी। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ वही, पृष्ठ संख्या 339। संजय कनोई का आत्म उदाहरण वह नमिता से संबंध केवल उसकी कोख का इस्तेमाल कर बाप बनने के लिए स्थापित करता है। इस भयानक सच को सुनकर संजय कनोई के प्रेम में पगी नमिता हतप्रभ सी होकर सोचती है। ब्रैकेट क्लोज। चार, पृष्ठ संख्या 119। चार, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, उसे लगता है कि गर्भ कल नहीं आज गिरा है उसका, कि रूप दुसाध मरा नहीं है, मरेगा भी नहीं जब तक औरत अपने पेट को उसकी लातों के प्रहार से स्वयं को बचाना नहीं सीख पाती। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ वही, पृष्ठ संख्या 540। ब्रैकेट में, किरपू दुसाध वह आदमी है जो अपनी लातों के प्रहार से अपनी पत्नी का गर्भ गिरा देता है। ब्रैकेट क्लोज। पाँच, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, मत भूलो औरत के अस्तित्व का तिलिस्म उसकी देह से ही उपजा है। मैं आभूषणों के शिल्प का इतिहास अन्वेषित करने निकली थी, पाया वह और कुछ नहीं, स्त्री देह के तिलिस्म का ही शिल्प है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ वही, पृष्ठ संख्या 214। अगला पैराग्राफ, उपयुक्त सारे प्रसंग स्त्री देह अस्मिता से जुड़े गए हैं। वह देह की कैद में बाहर आत्मनिर्भर होकर भी पूरी तरह नहीं जी पा रही है। लोग उसे वस्तु रूप में ही देखते हैं। वह सवाल तो उठाती है, लेकिन व्यवस्था की ताकत उसे पुनः निढाल कर देती है। उसे कदम कदम पर यह एहसास दिलाया जाता है कि वह प्राइवेट प्रॉपर्टी है। वह सार्वजनिक जीवन में भागीदार बनने की कोशिश भी ना करे, वरना वह यूं ही लुहलुहान होती रहेगी। शिव कुमार मिश्र उपन्यास के इस पक्ष पर अपनी सटीक टिप्पणी देते हुए कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, जिन नारी चरित्रों को उन्होंने उपन्यास में उभारा है, उन्हें यह बताने के लिए उभारा है कि स्त्री की मुक्ति का सवाल, उसे देह से ऊपर उठकर पहचाने जाने का सवाल, एक मानुषी के रूप में औरत को स्वीकार करने का सवाल आज भी कितना कठिन और कितना जटिल है। एक आवा है जिसमें औरत जल और तप रही है, चिटक बिखर रही है, भस्म हो रही है, राख बन रही है, तो कहीं सुनंदा और किसी किशोरी बाई की तरह पक और मजबूत भी हो रही है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ पहल ब्रैकेट में पत्रिका शिव कुमार मिश्र, पृष्ठ संख्या 290। अगला पैराग्राफ। उपन्यास में लेखिका ने स्त्री देह संबंधी पुरुष दृष्टि के खिलाफ एक आत्मनिर्भर और आत्मसम्मानी व्यक्तित्व की तरह अपराध बोध की मानसिकता से बाहर निकलने और आरोपित देहवादी मूल्यों को खारिज करने की सलाह अपने पात्रों के माध्यम से दी है।